उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर डायरी में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। पूर्वोत्तर जब हम कहते हैं तो हमारा आशय होता है देश के सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्रों से, और इनमें 8 राज्य आते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम, और यही हैं हमारे अष्टलक्ष्मी राज्य। सिक्किम के अलावा बाकी एक साथ जुड़े राज्यों को 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स के नाम से भी पुकारा जाता रहा है। पूर्वोत्तर डायरी। लोकतंत्र के महापर्व यानी मतदान, यानी देश के हर नागरिक के लिए वोट देने के अधिकार का दूसरा चरण शुक्रवार को संपन्न हो गया। पूर्वोत्तर में इस चरण में जहां वोट डाले गए, आपको बताएं कि असम में 5 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान हुआ, प्रतिशत 77 से ऊपर रहा। मणिपुर में 78% से भी ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। सेनापति जिले के माओ विधानसभा क्षेत्र में 89% मतदान हुआ है। सबसे कम 59.85% मतदान जिरीबाम में दर्ज किया गया। बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र की एकमात्र सीट के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। और बात करें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा में 79% से अधिक मतदान रिकॉर्ड हुआ है। तो ये थी मतदान की जानकारी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे इन अष्टलक्ष्मी राज्यों की कला और शिल्प के बारे में। तो प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर शांत और सुंदर वातावरण और इसके साथ ही सहज जीवन शैली से आप यहाँ मुलाकात कर सकते हैं। पूर्वोत्तर डायरी। तो चलिए आइए आधे घंटे के सफर में हमारे साथ और जानिए अद्भुत कौशल, अद्भुत क्षमता और शक्ति से भरपूर हमारे पूर्वोत्तर को, जहां शिल्प, कला और कौशल ऐसा कि आप हैरान रह जाएं। रंगों का ऐसा सुंदर समन्वय कि कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए, और संगीत ऐसा जो मन को मोह ले।
एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। वो एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। खुल के खिल खिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये, मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती।
पूर्वोत्तर बस्तर के समूचे इलाके अगर हम देखें तो बड़ी जनसंख्या में यहाँ जातियाँ, जनजातियाँ और उप जनजातियाँ हैं। यहाँ रेखांकित हम ये करना चाहते हैं कि चाहे कोई भी समुदाय, कोई भी जनजाति हो, इन सभी में शिल्प की एक बहुत मजबूत और परंपरागत परंपरा देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, प्रत्येक जनजाति शिल्पकारी में कुछ न कुछ उत्कृष्ट है और ये उत्कृष्टता इसके सदस्यों द्वारा बनाई गई चीजों को देखते हुए हमें समझ में आती है और कोई भी जो उत्पाद है उसमें ये स्पष्ट दिखाई देती है। यानी सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य में कला और शिल्प अपना अनूठा रूप, अपना अलग अंदाज और अपनी जीवंत शैली लिए हुए है। तो आइए पहले चलें अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की एक जीवंत शिल्प परंपरा है और प्रत्येक जनजाति शिल्पकारी में बेहद उत्कृष्ट है। उत्कृष्टता की हम बात कर रहे हैं वो इसके कलाकारों द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों में साफ साफ दिखाई देती है। इनके शिल्प के कार्य क्षेत्र में मुख्य रूप से शामिल हैं कालीन बनाना, मुखौटे, पेंट किए गए लकड़ी के पात्र, बांस और बैंत के शिल्प, बुनाई, लकड़ी पर नक्काशी, आभूषण और इसी तरह के कुछ और शिल्प भी हैं जिनमें हम शामिल कर सकते हैं हाथ से बनाए गए मिट्टी के बर्तन, पीतल की कटाई और चांदी के काम बेहद लोकप्रिय हैं। और जानते हैं अरुणाचल में बकरी के बालों, हाथी दांत और इसी तरह के मनके बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के सुंदर आकर्षक पत्थरों और पीतल से बनाई गई तथा कांच से बनी विभिन्न वस्तुएं यहाँ देखी जा सकती हैं।
अरुणाचल की बात करूं क्या है धरती की शोभा, उत्तर पूर्व भारत का है प्रदेश जो मन लोभा। अरुणाचल की बात करूं क्या है धरती की शोभा, उत्तर पूर्व भारत का है प्रदेश जो मन लोभा। अरुण प्रभा की रौनक से जगमग है अपना जीवन, और विकसित समृद्धि विकास के सपने देखे नयन।
आइए अब रुख करते हैं असम का। असम में वैसे देखें तो मुख्य रूप से कृषि ही की जाती है और इसके साथ ही यहाँ के लोगों ने विभिन्न प्रकार की कलाएं और शिल्प में उत्कृष्टता भी हासिल की है। असम के लोग हथकरघा बुनाई, बेंत और बांस के काम और साथ में पीतल और कांसा धातु के काम, लकड़ी का काम, हाथी दांत, मिट्टी के बर्तन और रेशा शिल्प में अद्भुत कारीगरी आपके सम्मुख रखते हैं। हथकरघा बुनाई में एंडी, मूंगा और शहतूत के रेशम की संस्कृति भी शामिल है। अब चलते हैं मणिपुर की ओर। मणिपुर ने जनजातीय परंपराओं तथा वैष्णव मत के अपने विशिष्ट मिश्रण के साथ देश की संस्कृति की समृद्धि और विविधता में बहुत बड़ा योगदान किया है। मणिपुर के विभिन्न रंगीन शिल्पों में से उनके वस्त्र, मजबूत कांसे की कटोरियां बनाई जाती हैं, बेंत और बांस और स्पॉन्जी ईक की बनी चटाई का विशेष चर्चा हम यहां करेंगे। आप जानते हैं कि मणिपुर में जो सोना है और सोने के चढ़े हुए आभूषण, विशेष रूप से कानों की बालियां, हार, बाजूबंद और कंगन बेहद प्रसिद्ध हैं। हमारी महिला श्रोता ये जरूर जानती होंगी कि सोने के आभूषण मणिपुर में बेहद सुंदर डिजाइन के साथ देखे जा सकते हैं, जिसमें महीन कारीगरी देखने लायक होती है। मणिपुर में तिनकों की और मिट्टी के सुंदर गुड़िया और खिलौने भी बनाए जाते हैं। और अब चलते हैं बेहद सुंदर जगह मेघालय। मेघालय यानी मेघों के बादलों के घर में। मेघालय को इसकी विभिन्न कलाओं तथा शिल्प के लिए जाना जाता है। मेघालय के शिल्प में आपको बेंत और बांस का प्रमुख स्थान मिलेगा। गारो हिल्स में वस्त्रों की कलात्मक बुनाई तथा लकड़ी पर नक्काशी का काम किया जाता है। एंडी रेशम की बुनाई तो बहुत ही प्रसिद्ध है। कालीन की बुनाई, आभूषण और हाँ, संगीत वाद्य यंत्र यहाँ की एक अन्य खूबसूरत विशेषता है। मेघालय में कालीन की बुनाई, आभूषण और जो संगीत वाद्यों पर सज्जा की जाती है वो देखने लायक है। इस राज्य का अद्वितीय शिल्प अनानास के रेशे की वस्तुएं और इसकी पत्तियों से रेशे का प्रयोग विभिन्न प्रकार के नेट, बैग और पर्स बनाने के लिए किया जाता है। मेघालय नृत्य तथा संगीत के क्षेत्र में सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध है। यहाँ बहुत से तरह के नृत्य किए जाते हैं, जिसमें नाहक जोत, मस्तीय, श्रादवेद, शांत्यंती, ये नाम प्रमुख हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले आपको मेघालय का एक गीत सुनवाते हैं। और अब चलते हैं मिजोरम। मिजो लोगों को अगर हम बहुत ही बेहतर शिल्पकार और कुशल कारीगर कहें तो ये गलत नहीं होगा। इनके उल्लेखनीय शिल्प में शामिल है बुनाई, बांस तथा बैट पर किया गया शिल्प या बैट से बनाया गया शिल्प, आभूषण और संगीत वाद्य। हाँ, बैट से पाइप भी बनाए जाते हैं। बुनाई मिजो संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। बांस और बैट के काम में मिजोरम में समान रूप से महत्व दिया जाता है और आप आने वाली पीढ़ी यानी छोटे युवा बच्चों को भी आप देख सकते हैं कि वे बेहद खूबसूरत बांस की बुनाई और बैट का काम करते हैं। हम चलेंगे नागालैंड। हमारे देश की बहुरंगी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। नागालैंड की कला और शिल्प में बुनाई, टोकरी बनाना, लकड़ी का काम और साथ ही साथ आभूषण बनाना शामिल है। नागा लोग मनके, शैल, पक्षियों के पंख और फूलों का प्रयोग करके विभिन्न उत्पाद बनाते हैं। और बेहद सुंदर मालाएं और आभूषण बनाते हैं मनकों की। बुनाई की तरह मिट्टी के बर्तन बनाना महिलाओं का विशेष शिल्प है। नागा लोग पहिए का प्रयोग किए बिना हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। आप समझ रहे हैं ना, पहिया जो कि चाक कहा जाता है, कुम्हार चाक पर बनाता है, तो नागालैंड में उसका प्रयोग नहीं किया जाता और उसके बिना ही हाथों से मिट्टी को इस तरह से आकार दिया जाता है कि वो बेहद खूबसूरत लगती है। नागालैंड के लोग दैनिक प्रयोग की वस्तुएं जैसे बर्तन आदि बनाने के अलावा कई धार्मिक विश्वास से जुड़े हुए और कई प्रथाओं से संबंधित नक्काशी का काम लकड़ी पर भी करते हैं। अब हम एक सुंदर से छोटे से राज्य त्रिपुरा आपको लिए चलते हैं, जो अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है। यहाँ इतने सुंदर महल और यहाँ इतिहास और परंपरा का बखान करते हुए भव्य इमारतें आपको देखने को मिलेंगी। त्रिपुरा में जनजातीय लोगों की बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ विभिन्न प्रकार के परंपरागत शिल्प देखने को मिलते हैं। हथकरघा इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शिल्प कहा जा सकता है। त्रिपुरा हथकरघा की प्रमुख विशेषता है। विभिन्न रंगों में फैली हुई इसकी कढ़ाई के साथ ही बड़ी ही खूबसूरती से बनाई गई लंबी लंबी पट्टियां जिसमें कुछ प्रमुख रंग होते हैं। इसके बाद बैंत और बांस का शिल्प आता है। लोकप्रिय हथकरघा वस्तुएं हैं बांस की स्क्रीन, लैम्प शेड, टेबल मैट, शीतल पट्टी, लकड़ी की नक्काशी, चांदी के आभूषण और यहाँ अन्य भी कई इसी तरह के शिल्प प्रयोग किए जाते हैं। त्रिपुरा में उपलब्ध कराए जाने वाले पीतल और कांसा धातु की वस्तुओं की पहचान अपनी अलग ही छवि बनाती है। इस बीच बीते शुक्रवार को नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन NBSE ने शुक्रवार को हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट HSLC और हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट HSSLC परीक्षा के 2024 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए। हमारी संवाददाता असनुआ ने हमें बताया कि क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल दीमापुर के छात्र महाचिलो यंथन ने 98.83% अंक हासिल किए और इसके साथ ही परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया। सेंट पॉल स्कूल फेस्मा के केट्सिनो जेन फ्रांसिस ने 98.67% अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहे और दीमापुर की होली क्रॉस हायर सेकेंडरी स्कूल की पवित्रा देव और दीमापुर के MGM हायर सेकेंडरी स्कूल की अमीना बेगम ने 98.50% अंक हासिल करके तीसरे स्थान पर वे रही। HSSLC में डेंटी बर्ड्स कोहिमा के कैलेट सोले मेकरो ने 97.40% के साथ ही कला स्ट्रीम में शीर्ष स्थान हासिल किया और वाणिज्य में दीमापुर स्कूल के छात्र 98.40% अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे। मोकोकचुंग के विज्ञान वाले वर्ग में क्वीन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र नरोला इंगसोंग 96.20% अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे। तो इन सभी छात्रों को शुभकामनाएं।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले,
बात करते हैं नागालैंड के वोखा गांव की। वोखा गांव के एक किसान हैं श्री जिलो बेमो एरोई। इन्होंने जानते हैं धनिया का पौधा उगाया और धनिया के पौधे की हम ऊंचाई तो जानते ही हैं, लेकिन उन्होंने 8.75 फीट की ऊंचाई का धनिया का पौधा उगाया। और इसकी वजह से फसल के साथ एक व्यापक ध्यान आकर्षित किया लोगों का, और उनकी इस उपलब्धि ने न केवल सबको हैरान किया बल्कि ये जिज्ञासा पैदा की कि वे खेती के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये रिपोर्ट हमें वोखा से हमारी संवाददाता योजना मूरी ने भेजी है। उन्होंने बताया कि वे बहुत विनम्रता पूर्वक ये बताते हैं वो किसान कि उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय जो दिया है वो पारंपरिक कृषि की पद्धतियों को दिया है, और उन्होंने बल देते हुए ये बताया कि वे इसी तरह की खेती का उपयोग करते हैं और उसी की वजह से येलोबेमो एरोई ने इतनी अच्छी धनिया की खेती की है। और इसके साथ ही अब समय कह रहा है आज अब यहीं तक बातचीत को विराम देना होगा। पूर्वोत्तर का समूचा इलाका हवाई, सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा है। कोई भी जगह अब दूर नहीं। तो परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पूर्वोत्तर राज्यों को अवश्य ही देखें और आनंद लें। आप पूर्वोत्तर में अद्भुत आनंद, अद्भुत क्षमता और कौशल को देखेंगे और उसे महसूस करेंगे। तो अपने देश को देखिए और जानिए और चले आइए पूर्वोत्तर की ओर। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। हमारा ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। तो अब अगले रविवार आपसे मुलाकात होगी। अब हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।